जोया ने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए और अलमारी से एक नई चादर निकाली। पुरानी चादर खून से रंग चुकी थी। जोया ने नई चादर ओढ़ी और बिस्तर पर लेट गई। गले में भारी दर्द था, पर रूह पर लगे घावों के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। रात हो गई थी। सकीना जोया के कमरे में खाना लेकर आई। जोया ने उसे खाना रखकर जाने को कहा। सकीना हैरान होकर देखती रही। पिछले 3 दिन से वो लगातार जोया के कमरे में आ रही थी, खाना, गर्म पानी, दवाइयां लेकर, लेकिन जोया ने एक शब्द नहीं कहा था। चादर में लिपटी जोया को देखकर सकीना और भी हैरान हुई। उसने आज सुबह ही जोया को कपड़े पहनाए थे। उसे लगा था कि कम इतना तो होगा, पर ये क्या। जोया ने सारे कपड़े उतार दिए थे और फिर से चादर में लिपट गई थी। सकीना सोच में डूबी कमरे से बाहर चली गई। जोया ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से उठकर खाना खाया और लेट गई। रात के 11 बज गए थे, पर न अरमान आया और न अरहम। जोया को लगा शायद उसके गले के कट के कारण वे अपनी दरिंदगी दिखाने नहीं आए। नींद आने लगी थी। वो धीरे धीरे नींद में सो रही थी कि बाहर किसी की आहट सुनाई दी, और देखते ही देखते वे दोनों साइको वहां आ धमके। जोया को बिना कपड़ों के देखकर दोनों भाई चौंक गए, पर कुछ नहीं बोले। वे अपना वहशीपन फिर शुरू करने वाले थे। जैसे ही अरहम जोया के हाथ बांधने के लिए आगे बढ़ा, जोया बोली, रुको, मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? तुम्हें मेरे हाथ बांधने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हें करना है करो और जाओ यहां से। अरहम हैरानी से उसे देखने लगा। अरमान भी चौंक गया। अरहम और अरमान धीरे धीरे जोया की ओर बढ़ने लगे और फिर से अपना खेल शुरू कर दिया। वे उसे किस करते हुए भी ये नहीं देख रहे थे कि उसके गले में कट है। उन्हें बस उसे तकलीफ देनी थी। पर आज क्या हुआ? वो नाजुक सी लड़की जोया, जो रोज इन दोनों साइको के आगे रोती और गिड़गिड़ाती थी, आज चूं तक की आवाज नहीं निकाली। वो एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। अरमान और अरहम जोया के इस बर्ताव से हैरान थे। वे उसे नोच और काट रहे थे, पर जोया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वे उसे देखने लगे। आज वे नोचने काटने से आगे नहीं बढ़ पाए। वे उसके साथ जबरदस्ती इसलिए करते थे ताकि उसके रोने, चिल्लाने, गिड़गिड़ाने की आवाज सुन सके और उसके मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती कर सके। पर आज क्या, आज उन्हें कुछ भी सुनने को नहीं मिला। दोनों भाइयों ने काफी नोचा और काटा, लेकिन आज जोया के मुंह से कोई आवाज नहीं आई। वे दोनों भाई आज जोया के साथ कुछ नहीं कर पाए और शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद जोया के चेहरे पर बड़े दिनों बाद एक मुस्कान आई। ये कोई छोटी मोटी मुस्कान नहीं थी, ये कुछ हासिल करने की मुस्कान थी। जोया समझ चुकी थी कि अब वो इन दोनों भाइयों से कैसे निपटेगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर वे दोनों भाई एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि जोया ने उनका आधा प्लान खराब कर दिया था। तभी अरहम अरमान से बोला, भाई उसको हो क्या गया था? वो चिल्लाई क्यों नहीं, रोई क्यों नहीं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा हमारे प्लान का? हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी? इससे पहले कि अरमान कुछ कहता, सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज आई। दोनों उसी ओर देखने लगे। जोया केवल उसी चादर में लिपटी हुई कमरे से बाहर डाइनिंग टेबल तक आ पहुंची थी। अरमान के गुस्से से बुरा हाल था, क्योंकि हॉल में अरमान के कई नौकर थे। कोई खाना बना रहा था तो कोई सफाई कर रहा था, कोई सर्व कर रहा था। हर कोई अपना काम छोड़कर जोया को ही देखने लगा था। अरहम ने गुस्से में तेज आवाज से सभी नौकरों को बाहर जाने को कहा, और एक एक करके सभी नौकर जोया को देखते हुए निकल गए। जोया आते ही बोली, आज नाश्ते में क्या है, जल्दी दो, मुझे बेहद भूख लगी है। जोया ठीक अरमान के सामने बैठ गई। उसने एक हाथ से अपनी चादर संभाली और फिर ब्रेड पर जैम लगाने लगी और बड़े चाव से खाने लगी। तभी जोया ने सकीना को आवाज लगाई। सकीना उसकी एक आवाज में उसके पास आई। जोया बोली, सुनिए, मुझे दोपहर में बिरयानी, कबाब और पकौड़ों का रायता खाना है, सो प्लीज टाइम से बना देना और कमरे में मत लाना, क्योंकि मैं यहीं अपने दोनों शौहरों के साथ ही खाऊंगी। ठीक, सकीना ने हामे गर्दन हिला दी और चली गई। अरमान और अरहम के गुस्से से बुरा हाल था। वे दोनों जोया को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, पर उनके पास उसे कुछ कहने के लिए नहीं था। जोया ने देखा कि वे दोनों उसे घूर रहे हैं तो बोली, क्या हुआ, तुम दोनों नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? रुको, मैं सर्व करती हूँ। ऐसा कहकर जोया उठी और उसके हाथ से चादर अचानक छूट गई। वो उन दोनों के सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। अनायासी उन दोनों की नजर उस पर पड़ी। उनका शर्मिंदगी से बुरा हाल हो गया, क्योंकि जोया का शरीर उस वक्त उसके साथ हुए जुल्म को बयान कर रहा था। हर जगह घाव थे। जोया जैसी खूबसूरत लड़की आज अचानक इतनी भयानक दिख रही थी। उसके होंठ, गाल सभी पर काटने के निशान थे। जोया के शरीर ने एकदम से दोनों भाइयों को आईना दिखा दिया था। अरहम जल्दी से उठा और उसे चादर में लपेट दिया और सकीना को आवाज लगाई, सकीना भी इसको लेकर जाओ और कपड़े पहनाकर तैयार करो, मैं इसको मॉल लेकर जा रहा हूँ कपड़े दिलाने के लिए। अरमान अरहम को देखने लगा और बोला, हाँ मैं भी साथ जाऊंगा, क्योंकि ये एक जंगली शेरनी है, इसको हम दोनों ही कब्जे में कर सकते हैं। जोया के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आ गई थी। कुछ ही समय में सकीना ने उसे तैयार कर दिया और नीचे लेकर आ गई।